एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिस हॉफमैन के 1997 में आए उपन्यास हियर ऑन अर्थ की।
हाँ, हियर ऑन अर्थ। ये उपन्यास एमिली ब्रॉन्टे के क्लासिक वदरिंग हाइट्स का एक बहुत ही कह सकते हैं कि आधुनिक और शायद ज्यादा तीव्र रूपांतरण है।
बिल्कुल, और इसकी पृष्ठभूमि भी बड़ी दिलचस्प है। पश्चिमी मैसाचुसेट्स का एक छोटा दलदली सा कस्बा, जिनकी टाउन। ऐसा लगता है जैसे वो कस्बा खुद कहानी का एक हिस्सा हो।
और एलिस हॉफमैन, उनका लिखने का अंदाज ही अलग है। वो अपने जादुई यथार्थवाद के लिए जानी जाती हैं।
हाँ, मैजिकल रियलिज्म, मतलब कहानी एकदम असली दुनिया की लगती है।
पर उसमें वो बड़ी खूबसूरती से रहस्य, लोक कथाएं, मिथक, ये सब ऐसे पिरो देती हैं जैसे ये सब रोज की बातें हों।
सही कहा, और हेयर ऑन अर्थ शायद उनके सबसे सबसे गहरे भावनात्मक रूप से झकझोरने वाले कामों में से है।
इसमें वो जुनूनी प्यार है जो हदें नहीं देखता, अतीत के साए हैं जो पीछे लगे रहते हैं,
और अपनी असल पहचान की वो तलाश।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या हम वाकई अपने अतीत से भाग सकते हैं, अपनी उस मूल प्रकृति से?
या फिर कुछ रिश्ते, कुछ जगहें हमें वापस खींच ही लेती हैं, चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं।
तो कहानी शुरू होती है मार्च मरे से।
हाँ, मार्च मरे। वो करीब 20 साल से कैलिफोर्निया में रह रही है। पति रिचर्ड, बेटी ग्वेन, एक बिल्कुल व्यवस्थित जिंदगी,
धूप वाली, शांत।
बिल्कुल, लेकिन उसे लौटना पड़ता है अपने गृहनगर जेंकिन टाउन, मैसाचुसेट्स।
और वजह?
वजह है जूडिथ डिल का अंतिम संस्कार। वो आया जिसने उसे पाला था माँ की तरह, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं रहती।
जैसे ही वो उस कस्बे में वापस आती है, कुछ बदल जाता है।
हाँ, वो वहाँ की चिपचिपी गर्मी, वो दलदल की अजीब सी गंध, ये सब जैसे पुरानी दबी हुई यादों को जगा देते हैं। माहौल में ही एक बेचैनी सी है,
कुछ अनकहा सा।
हाँ, एक अशुभ संकेत जैसा। ये माहौल बहुत जरूरी है कहानी के लिए, दिखाता है कि कैसे सतह के नीचे सब कुछ उबल रहा होता है।
और यहीं से उपन्यास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है।
बिल्कुल, और फिर उसी अंतिम संस्कार में लगभग 20 साल बाद मार्च का सामना होता है हॉलिस से।
हॉलिस, वही नाम जो वदरिंग हाइट्स के हीथक्लिफ की याद दिलाता है।
हाँ, वही हॉलिस जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, वो अनाथ लड़का जिसे मार्च के पिता कहीं से लाए थे,
और जो मार्च के साथ ही पला बढ़ा था, उसका साया, उसका राजदार।
और उनका आमना सामना होना, हॉफमैन उसे लिखती हैं जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो,
बिना कुछ कहे।
हाँ, एकदम खामोशी में एक समझ कि इतने साल भी उनके बीच की उस गहरी कशिश को कम नहीं कर पाए हैं।
और आपका हॉलिस पहले जैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो अमीर है, ताकतवर है, और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो इतने साल मार्च का ही इंतजार कर रहा था।
यहीं से वो वदरिंग हाइट्स वाली गूंज सुनाई देने लगती है।
ये ना,
किरदार जैसे ब्रॉन्टे के किरदारों के अक्स हों, पर आज के जमाने के।
सही कहा। चलिए इन किरदारों को थोड़ा और देखें।
हाँ, सबसे पहले मार्च मरे, जो कैथरीन अर्नशॉ की तरह है, कहानी का दिल पर दो हिस्सों में बटा हुआ।
कैलिफोर्निया में उसकी छवि एकदम अलग है, शांत, सभ्य, नियंत्रण में।
लेकिन जेंकिन टाउन
आते ही जैसे वो खोल उतर जाता है। उसके अंदर की वो पुरानी जंगली आवेगी लड़की फिर जाग उठती है, वो लड़की जो कभी सिर्फ हॉलिस की थी।
तो उसका सफर आगे बढ़ने का नहीं, पीछे लौटने का है, समर्पण का।
हाँ, एक तरह से वो जैसे दो दुनियाओं में फंसी है, एक तरफ रिचर्ड का सुरक्षित धूप वाला जीवन,
तर्क वाला।
हाँ, और दूसरी तरफ हॉलिस के साथ वो गहरा दलदली, जैसे किस्मत से बंधा खिंचाव,
जैसे पतंगा आग की तरफ जाता है।
बिल्कुल वही, जानता है कि जलेगा पर खिंचा चला जाता है।
और फिर है हॉलिस, हीथक्लिफ का आधुनिक अवतार,
उपन्यास का स्याह केंद्र, अनाथ, समाज से बाहर का। उसके रंग को भी धुएं जैसा बताया गया है, जो शायद उसकी बाहरी पहचान दिखाता है।
बचपन में मार्च का प्यार ही उसका सब कुछ था।
हाँ, वही उसका सहारा था, और जब मार्च ने उसे छोड़ा एक बेहतर सामाजिक जीवन के लिए, तो उसका प्यार जुनून और बदले की भावना में बदल गया।
उसमें कशिश तो है, पर
हॉफमैन उसे रोमांटिक हीरो नहीं बनाती। वो क्रूअल है, मैन्युपुलेटिव है, पजेसिव है,
एक खतरनाक इंसान जिसके जख्म बहुत गहरे हैं।
उसका एक ही मकसद है, मार्च को वापस पाना और उन सबको सजा देना जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी।
उसके लिए प्यार और कब्जा एक ही बात है।
हाँ, वो उस जंगलीपन का प्रतीक है जिसे सभ्य नहीं बनाया जा सकता, और वो काले कुत्ते।
हाँ, वो काले कुत्तों का झुंड जो हमेशा उसके साथ रहता है।
वो क्या है?
वो हॉफमन का जादुई यथार्थवाद है। वो कुत्ते जैसे उसके अंदर के अंधेरे, उसके अनियंत्रित गुस्से का जीता जागता रूप है, उसके साये की तरह।
अच्छा, और इस अंधेरे के ठीक उलट है रिचर्ड।
हाँ, रिचर्ड एडगर लिंटन जैसा, सभ्यता, नेकी, तर्क। वो एक खगोल शास्त्री है, तारों की दुनिया देखता है,
जो मार्चर हॉलिस की जमीनी उथल पुथल वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है।
वो सच में एक अच्छा इंसान है, मार्च से प्यार करता है, उसे एक सुरक्षित जीवन देना चाहता है।
लेकिन जिनकिन टाउन में वो बारी है।
बिल्कुल, वो अपनी पत्नी और हॉलिस के बीच के उस आदिम बंधन को समझ ही नहीं पाता। उसकी लाचारी देखना दुखद है।
और फिर है ग्वेन।
ग्वेन मार्च और रिचर्ड की बेटी, किशोर। वो छोटी कैथरीन की तरह है,
जो बड़ों के इस भावनात्मक तूफान में फंस जाती है।
हाँ, वो अगली पीढ़ी है जिसे विरासत में मिले जख्मों का सामना करना है। शुरू में वो माँ के बर्ताव से हैरान है, पिता के साथ है।
लेकिन हॉलिस उसे भी नहीं छोड़ता।
नहीं,
यही कहानी और ज्यादा स्याह होती है। हॉलिस मार्च पर काबू पाने के लिए ग्वेन की मासूमियत का इस्तेमाल करता है।
मतलब
उसे अपनी तरफ खींचता है। ये सिर्फ मार्च को कंट्रोल करने का तरीका नहीं, ये उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले आघात, जनरेशनल ट्रॉमा के भयानक विषय को भी सामने लाता है।
ये तो बहुत बहुत डरावना है कि कैसे एक पीढ़ी का दर्द अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है।
हाँ, और सवाल ये है कि क्या इस चक्र से निकला जा सकता है।
तो शुरुआत में मार्च खुद को रोकती है,
कोशिश करती है कैलिफोर्निया वाले जीवन को पकड़े रखने की, लेकिन हॉलिस का खिंचाव, या कहें कि अतीत का खिंचाव,
वो ज्यादा मजबूत है।
हाँ, वो अनिवार्य रूप से उसकी तरफ खींचती है।
और रिश्ता फिर से शुरू होता है
वहीं, उसी दलदल में, गुप्त मुलाकातें, उसी जंगली माहौल में जहाँ उनका प्यार पहली बार पनपा था।
हॉफमैन इसे किसी चुनाव की तरह नहीं दिखाती।
नहीं, ये एक बुखार जैसा है, एक बीमारी जिससे वो लड़ नहीं सकती। वो रिचर्ड से झूठ बोलती है, ग्वेन को नजरअंदाज करती है, जैसे वो पुरानी मार्च धीरे धीरे खत्म हो रही है।
ये जुनून की वो विनाशकारी शक्ति है जो सब कुछ निगल जाती है, पहचान, रिश्ते, जीवन।
हाँ, ये उन रोमांटिक कहानियों को चुनौती है जो ऐसे भस्म करने वाले प्यार को महान बताती हैं। यहाँ प्यार खतरनाक है।
एक उद्धरण है शायद उपन्यास में कि हॉलिस के लिए प्यार कोई तोहफा नहीं।
हाँ, बल्कि एक इलाका है जिस पर कब्जा करना है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी जला सकता है।
कहानी बीच बीच में उनके बचपन की झिलकियां भी दिखाती है।
फ्लैशबैक, हॉलिस का आना, मार्च के भाई एलन का बुरा बर्ताव और कैसे अकेली मार्च ही उसकी रक्षक थी। ये उनके बंधन की गहराई समझाता है, वो दुनिया के खिलाफ हम दो।
और जैसे जैसे उनका अब का रिश्ता गहराता है, हॉलिस का असली रंग और उभरता है।
उसका गुस्सा, उसका अधिकार जताना। वो मार्च का पुराना घर खरीद लेता है, उसे अतीत के सायों से भर देता है,
अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है शहर पर और इस तरह मार्च पर काबू पाने के लिए।
और फिर आता है वो सबसे विनाशकारी मोड़।
हाँ, जब मार्च फैसला करती है।
हाँ, वो रिचर्ड और ग्वेन को वापस कैलिफोर्निया भेज देती है और खुद हॉलिस के पास रुक जाती है।
ये तो पूरा समर्पण है अतीत के आगे,
अपना सब कुछ छोड़ देना, वर्तमान, भविष्य, परिवार, एक ऐसे अतीत के लिए जो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देगा। वो हॉलिस के साथ रहने चली जाती है।
यहाँ वो सवाल फिर सामने आता है, क्या हम अपनी जड़ों से बच सकते हैं।
मार्च को लगता है कि उसकी असली पहचान वही जंगली लड़की है, भले ही कीमत शांत खुशहाल जिंदगी हो।
जैसे वो तूफान से जन्मी थी और तूफान उसे वापस लेने आ गया।
हाँ, ये भाग्यवादी सोच बहुत हावी है। लेकिन हॉलिस को मार्च के मिल जाने से भी सुकून नहीं मिलता।
उसका बदला पूरा नहीं हुआ।
नहीं, मार्च पर काबू पाने के बाद उसका ध्यान जाता है ग्वेन की तरफ।
माँ के जाने से ग्वेन अकेली है, भ्रमित है,
और वो जेनकिन टाउन लौट आती है शायद ये समझने के लिए कि हॉलिस में ऐसा क्या है।
और हॉलिस,
वो उसकी किशोरावस्था की कमजोरी का फायदा उठाता है, एक बहुत ही अजीब परेशान करने वाला रिश्ता बनाता है, कुछ हद तक पिता जैसा, पर उसमें एक तनाव भी है।
ये उसकी क्रूरता की हद है।
और ये फिर से उस पीढ़ीगत आघात की बात को पुख्ता करता है, कैसे जख्म और पैटर्न एक पीढ़ी से दूसरी तक जाते हैं
जब तक कोई उन्हें तोड़े नहीं।
बिल्कुल, कुछ जख्म शायद वक्त भी नहीं भर पाता।
तो हॉलिस के साथ मार्च का जीवन कैसा है, क्या वो रोमांटिक है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जुनून का एकदम घोटू पिंजरा बन जाता है। जब प्यार दुनिया से कटकर सिर्फ दो लोगों के बीच रह जाता है तो वो जहरीला हो जाता है।
मार्च, जो अपनी पुरानी पहचान से पूरी तरह कट चुकी है,
वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से मुरझाने लगती है, खत्म होने लगती है।
कैथरीन अर्नशॉ की तरह।
हाँ, काफी हद तक। खुद को भूखा रखना, बीमार पड़ना, वो विनाशकारी जुनून उसे अंदर से खा जाता है।
और उपन्यास का अंत,
मार्च की दुखद असमय मृत्यु। वो ऐसे प्यार की शिकार हो जाती है जो असल दुनिया के लिए शायद बहुत ज्यादा था।
लेकिन हॉलिस, क्या उसकी मौत से उसका जुनून खत्म होता है?
नहीं, वो जैसे उस घर में, उस दलदल में एक भूत बनकर रह जाता है, हमेशा के लिए मार्च की याद से बंधा हुआ। उसे लगता है उनकी आत्माएं कभी अलग हो ही नहीं सकती।
तो अंत बहुत उदास है, वीरान।
हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं होता, सिर्फ नुकसान और दुख की गूंज रह जाती है।
और वो सवाल कि क्या हो अगर जिससे आप अपना दूसरा आधा समझें वही आपका विनाश हो?
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य विषयों को समेटें तो क्या कहेंगे?
पहला तो है जुनूनी प्यार का विनाशकारी रूप, एक नशे जैसा।
दूसरा, अतीत और अपनी मूल पहचान से भागने की नामुमकिन कोशिश।
हाँ, फिर वो द्वंद्व, जंगलीपन बनाम सभ्यता, हॉलिस और दलदल एक तरफ, रिचर्ड और कैलिफोर्निया दूसरी तरफ,
समाज से ठुकराए जाने का बदला
और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आघात, जनरेशनल ट्रॉमा, और एलिस हॉफमैन की शैली, वो जादुई यथार्थवाद।
हाँ, जैसे दलदल का जिंदा महसूस होना, हॉलिस का जानवरों से वो अजीब रिश्ता।
भाषा भी बहुत काव्यात्मक है, एक सपने जैसा बेचैन करने वाला माहौल।
बिल्कुल, जो पाठक को कहानी के अंधेरे में खींच लेता है।
तो ये उपन्यास शायद हमें याद दिलाता है कि हर प्रेम कहानी जीने लायक नहीं होती।
हाँ, कुछ कहानियाँ जुनून की आग में जलकर राख होने के लिए होती हैं, वे पोषण नहीं देती, भस्म कर देती हैं।
और ये भी कि अतीत की परछाइयाँ इतनी गहरी हो सकती हैं कि उनसे बचना नामुमकिन सा लगता है।
वो किसी न किसी तरह हमें ढूंढ ही लेती हैं।
अंत में एक सवाल शायद ये भी उठता है कि हॉलिस और मार्च जैसे रिश्ते क्या सिर्फ दो लोगों के जुनून की कहानी है,
या वे हमें समाज के उन अंधेरों कोनों, उन अनदेखे जख्मों के बारे में भी कुछ बताते हैं जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते?
एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकतत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।